ృందానందనివాసినృతిలశ్దామాభిరామోదరం రాధాస్కందరిశుజర్భుజం ృందేమంతేహరిదాసవర్యో జగరామ కృష్ణ చరణ పరతః ప్రమోద మానం తనోతి సహ గోగణయ పానీయసూయవసకం गोवर्धन की पूजा के अंतर्गत में और भी बहुत सी चीजें हैं। गोवर्धन पूजा में अकेले गोवर्धन पूजा अपनी स्वीकार नहीं करते, गो उनका अभिन्न अंग है। गो गोवत्स, गो गोपी, ये सब गोवर्धन पूजा के अंतर्गत है। गिरिराज की पूजा हो रही है गोवर्धन की, और गायों की पूजा न हो, बछड़ों की पूजा न हो, बछड़ियों की पूजा न हो तो ग्रहण नहीं करते। इसलिए सवेरे में सबसे पहले गोवर्धन जी की पूजा करने से पहले गो क्रीड़ा गो पूजन का कार्य होना चाहिए। हम लोगों ने संपन्न इसको किया सवेरे। गो माता जी हैं, विश्व की वो जननी है। जब से हम लोग गायों की पूजा करना छोड़ दिया है, ठीक से नहीं होती, तब से हमारी संस्कृति भी गड़बड़ी हो गई। इसलिए इनका आदर होना चाहिए। गायों की सेवा कृष्ण ने की, बचपन से की और अंत तक उन्होंने गायों की सेवा की। मैया ने कहा कि तुम्हारे लिए हम जूता मंगा देते हैं और छाता लगा देते हैं, तुम छाता जूता लेकर के जाओ, वन में चारों तरफ में कांटे हैं। आप लोगों की धारणा नहीं होगी जो कि नहीं गए हैं ब्रज में, ब्रज मंडल की परिक्रमा। आज से 40-50 वर्ष पहले, आजकल तो काफी साफ हो गया है, जंगल कट गए हैं, कांटे बहुत कम हैं, रास्ता भी सब पक्का रास्ता बना रहे हैं। 50 वर्ष पहले पक्का रास्ता क्या, कच्चा रास्ता भी नहीं था, बबुल के पेड़ और ऐसे कांटे जिसमें के नीचे ऊपर सब कांटे ही कांटे, पकड़ लेंगे वो छोड़ेंगे नहीं ऐसे, और ऐसे कोमल कांटे जो लग जाएंगे पैर में तो वो टूट करके आ जाएंगे और उनका वो सब रह जाएगा
सुंदर,
और उसमें पैर में वो लगता है चल नहीं था। तो ऐसे सब स्थान थे, उसमें हम लोग परिक्रमा किया था गुरु जी के साथ में। यही चौबे जी के हम लोग पिताजी के थे, नाना जी थे उस समय, ये लोग भी हमारे उम्र के करीब 22-24 वर्ष के उस समय में थे। आप उस समय में हम लोगों ने परिक्रमा की। अब तो बहुत सरल सहज हो गया है। तो गिरिराज गोवर्धन ब्रज में मुख्य है, तो गायों की पूजा, तो कृष्ण की मैया कह रही है जूती लगाने तो कांटे चुभ जाएंगे, तो कृष्ण ने कह दिया मैया बड़ी बात अच्छी कह रही है, तुम्हारा तो एक मैं लाला हूं और हमारे आराध्य ये कोटि कोटि गायें हैं, कोटि कोटि गायों के लिए छत्र और पादुका तू दे दे और हम भी पहन लेंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे। मैं तो उनका सेवक हूँ, दास हूँ, यदि स्वामी जूता न पहने और छत्र न लगाए और सेवक लगाए तो ये तो उचित नहीं। हमने सुना है दिलीप के लिए, दिलीप महाराजा से कैसी गाय की सेवा की, दिलीप महाराज जी ने अपने प्राणों की आहुति गो सेवा के लिए, तो मतलब दिलीप महाराज प्राण दे दिया। धर्मराज नहीं सिंह बना, सिंह बन करके गाय पर आक्रमण कर दिया और गाय भी साधारण नहीं थी, महाराज उनकी वशिष्ठ जी की गौआ थी, कामधेनु नंदिनी थी, नंदिनी थी, एक हुंकार में विश्व का संहार कर सकती थी, ऐसी वो साधारण नहीं थी, किंतु जानबूझ करके ये स्वांग रचा अभिनय किया उनकी परीक्षा लेने के लिए। बाघ ने कहा ये तो मैं इसको खा रहा हूं, ये मेरा खाद्य है, इसके बिना तो मैं मरूंगा, तो तुम्हारा तुमको पाप का हत्या का पाप लगेगा, इसलिए इसको खा रहा हूं, उसके बदले में हमको कुछ खाना दो, अगर दूसरा मांस दे देंगे, अरे नहीं मांस नहीं तो तुम अपना मांस दो, साथ साथ में वो तैयार हो गए। उन्होंने जब वो त्याग लिए में धर्म और गाय दोनों अपना स्वरूप बदल सके, गाय तुम बर मांगो, तुम उसको पुत्र नहीं हो रहा था, जाओ पुत्र हो। कृष्ण तो वो भी नहीं कुछ चाहते हैं, कैसी गरीबों की सेवा करते हैं, तो गायों की उन्होंने सेवा की, उन लोगों का भी कर्तव्य है गो माता की सेवा की, उनके एक एक रूम में हजारों हजारों सब तीर्थ हैं, वो हिंदू मुसलमानों के लिए भेद नहीं करती हैं, सबके लिए दूध देती हैं, किंतु मुसलमान लोग उसे मार कर खाते हैं, हिंदू लोग आदर करना चाहता है, जिंदगी जो गाय दूध नहीं देती हैं उनको भी कसाईयों के हाथ में बेच देते हैं। आजकल आर्थिक युग हो गया है तो गायों की पूजा होनी चाहिए, अंततः गोवर्धन के दिन तक पूजा करो। दूसरी बात, ब्राह्मण और वैष्णव की भी पूजा होनी चाहिए। गुरु गोष्ठे गोष्ठे व्यवस्था लयिषु सुजने भूसुर गणे, भूसुर माने ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नास्तिक नहीं भगवान का पूजन करने वाला ऐसा ब्राह्मण, तो हम लोगों के लिए ब्राह्मण जी हमके हमारे तीर्थ पुरोहित जी हैं, तीर्थ गुरु लोग भी कहते हैं, पहले सचमुच में होता था, आजकल तो वो सब समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने धारा रखी, बड़े संतोषी विप्र हैं, और 500 वर्ष तक जीव गोस्वामी का भी इनका लिखा हुआ इन लोगों के पास में, भक्ति विनोद ठाकुर जी का है, और सब हमारे चारों संप्रदाय के रामानुज इत्यादि मध्व विष्णु स्वामी निम्बादित ये सब लोगों के उससे ही ये लोग सब हैं, साधारण नहीं देखने में ऐसे लग रहे हैं, जो जो भी हैं संतोषी हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान भी हैं, सब भी हैं, तो ब्राह्मणों का भी आदर है, वैष्णव का भी आदर होना चाहिए, तो हम लोगों ने वैष्णव की पूजा की। वैष्णव लोग सबसे प्रसन्न किससे होते हैं, कीर्तन से, तो कीर्तन किया तो वैष्णव लोग भी प्रसन्न हैं। गिरिराज जी की पूजा सब लोगों ने मिलकर के की, उनका अभिषेक किया, विशेष करके दिवाली और अन्नकूट में गिरिराज जी का पूजन विशेष रूप से होना चाहिए, कहां कहां से देश विदेश से लोग करके दिवाली के दिन आकर के उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और आज के दिन में अन्नकूट घर घर में अन्नकूट लग रहा है, ऐसा कोई घर नहीं नास्तिकों को छोड़ करके, बिहार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के अतिरिक्त और बाकी सब लोग जरूर लगाते होंगे, बिहार मगध देश है, इसमें कौन कौन पहले जरासंध है, वह जरासंध, और उसी के पास में भगदत्त भागलपुर में रहता था, और सबसे बड़ा नास्तिक जगत में कौन आया, बुद्ध रे कपिल बुद्ध आकर के आज वेदा नास्ती ईश्वर ऐसा वो देश है, तो वहां के लोग भी दिवाली के लिए और अन्नकूट के लिए यहाँ पर आते हैं, बिना गोवर्धन पूजा के भक्ति होना बड़ा कठिन है, तो उसके साथ साथ में गो पूजा, गोवत्स पूजा, ब्राह्मण पूजा, वैष्णव पूजा, गिरिराज जी की पूजा। तो आज हम लोगों ने कुछ कुछ किया। अभी रह गया था हम लोगों का ब्राह्मणों का तीर्थ में रहने वाले संतोषी विद्वत और भगवत भक्त एकांतिक गोपाल गोपाल जी का ही माधवेंद्रपुरी के वहां पर अन्नकूट का हम विषय में बतलाएंगे। पहले हम लोग ब्राह्मण पूजा यहाँ पर पहले हम लोग करें। गिरिराज जी के संबंध में हम लोगों ने शास्त्रों में देखा है, जब रामचंद्र जी का पुल बन रहा था उस समय रामचंद्र जी ने आदेश दिए जहां जहां पर निकट में पर्वत हो पहाड़ हो उनको तुम लोग उखाड़ लाओ, सब लोग वहां इधर से को इधर से को इधर से लाखों लाखों बंदर छोटे बड़े चट्टानों को पत्थरों को ले आ रहे थे और नल और नील उनको राम नाम उच्चारण करते ही स्पर्श करते थे और वो तैरने लगते। इस तरह से जब पुल बनते 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 बंद होने को आया उस समय में हनुमान जी ने एक उछाल लगाई और एकदम चले गए द्रोणाचल में। द्रोणाचल कहाँ है? उधर ही हिमालय के विंध्याचल नहीं हिमालय के भीतर बहुत ही हरा भरा वन है उसमें और सुंदर सुंदर जीवित पत्थर है। उनके लड़के ये गिरिराज गोवर्धन जी हैं। ऐसा मत समझना जब जितने पहाड़ हैं सब निर्जीव होते हैं, उनमें जीवन भी होता है। और जैसे जितने पेड़ हैं सब सूखे हुए नहीं होते, हरे पेड़ भी होते हैं और सूखे हुए पेड़ भी होते हैं, वैसे पत्थरों में भी जो कि बढ़ते हैं क्रमशः वो जीवित हैं, उनमें ज्ञान होता है। तो ये इनमें भी ये बढ़ रहे थे और इसके चारों तरफ में बड़े सुंदर वन उपवन सब लगे हुए। शंकर जी के कोई आराधक थे? कौन? अच्छा हनुमान जी का पहले हनुमान जी ने छलांग लगाई वहां पर गए और लेकर के अपने हाथों पर लेकर के वहां से लेकर के चले आए। गिरिराज जी कुछ पुलकित हो रहे थे, सोच रहे थे अच्छा ले तो जा रहा है ले चले, किंतु ब्रज से होकर के तो जाएगा तो हम तो ब्रज को हम देख सकें और यदि कहीं किसी प्रकार से भगवान की कृपा हुई ब्रज में ही रह गया तो कृष्ण की लीला स्थली में यमुना के किनारे और वहीं पर कृष्ण आविर्भूत होंगे, उनकी समस्त लीलाओं को दर्शन करने का मुझे सुयोग हो। ऐसा सोचकर के पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, आज मैं उनके फल में जा रहा हूँ, धाम में जा रहा हूँ। जब यहाँ पर आए गिरिराज गोवर्धन के पास जहाँ भी हैं ब्रज में आए, अब उनकी प्रबल इच्छा हुई मैं यहीं पर हूँ जहाँ भी हैं। इधर रामचंद्र जी ने अंगद को या किसको भेजा, जाकर के झिझोरा पीट करके बतला दो जो बंदरों से जो बंदर जहाँ से पत्थर ले आए हैं बस वहीं पर रखने, पुल बंद गया है पूरा, अब लाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी को यहाँ पर आदेश मिला बस उन्होंने उसी सुंदर स्थान पर उन्होंने रख दिया। पास में उनकी मानस गंगा है, उधर में नेत्र के स्वरूप में राधा कुंड और श्याम कुंड है, पासी में कुसुम सरोवर भी है, पासी में गोविंद कुंड है और आगे चलने पर संकर्षण कुंड है, पासी में गौरी कुंड है, आगे चलेंगे नवल कुंड अप्सरा कुंड, इसके बाद में सुरभी कुंड है, ऐरावत कुंड है, पासी में अन्नकूट का स्थान है, आगे बढ़ेंगे मानसी गंगा का गोपी घाट है, उसे और आगे बढ़े उद्धव क्यारी है, उससे आगे और सब एक एक की कहानी कही जाए उपाख्यान कितने न जाने दिन लगे। उनको हनुमान जी रख करके चले गए, सबसे वहां पर विराजमान। और एक है काशी में एक कोई ऋषि रहते थे पुलस्त्य, उसी पुलस्त के वंश में रावण है, पुलस्त के पुत्र से विश्रवा, और विश्रवा का यह पुत्र था। पुलस्त के दो लड़के थे, एक से लड़के हुए ये कुबेर जी और एक के हुए विश्रवा जी। विश्रवा का पुत्र हुआ रावण और एक वंश हुआ। रावण बड़ा दुष्ट निकला, जय विजय के वो लोग अवतार हैं कुंभकर्ण और रावण। तो ये पुलस्त जी देखा क्या, जैसे काशी उजाड़ सी लगती है, नदी तो है किंतु कोई पर्वत नहीं है, हरियाली नहीं है, पर्वत नहीं रहने से हरियाली नहीं लगती, कुंज सघन नहीं है, हिरणे नहीं है, मयूर नहीं है, कोयल नहीं कुहकती, बेली चमेली इत्यादि के फूल नहीं है, कदम्ब कानन नहीं है और सब कुछ नहीं है। इसलिए क्या अच्छा होता जो कोई सुंदर सा पहाड़ यहाँ पर मैं ले आता और यहाँ पर गंगा के किनारे रख देता, जैसे जमुना के किनारे ये हैं। इसलिए वो चले, ध्यान लगाया ये सबसे अच्छा पर्वत कौन सा है, छोटा जो बढ़ रहा। नाना जब द्रोणाचल के पुत्र हैं हिमा देने गए, द्रोणाचल से उन्होंने निवेदन किया जो तुम अपने पुत्र को हमें दे दो। मैंने कहा पुत्र हमारा प्राणी के समान प्यारा है, मैं नहीं दे सकता। उन्होंने कहा जैसे मैं अभिसंपात दे दूंगा, मैं साधारण ऋषि नहीं हूं। डर के मारे उन्होंने पुत्र दे दिया, कहा जब पुत्र जाओ हमारा स्नेह तुम्हारे ऊपर में सब समय रहेगा। गिरिराज जी ने कहा मैं जाऊंगा तो, किंतु अपवित्र होकर के मुझको कोई नहीं ले जा सकता, और जहां पर कोई बीच में एक जगह रख देगा फिर उठ करके मैं नहीं जाऊंगा। मंजूर है सर? आपका हाँ मंजूर है, पुलस्त ने कहा। ठीक है, स्नान करके आचमन करके और सब प्रकार से पवित्र हो करके और उनको उठाया। चलते चलते वहां से आते 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 कितने घंटे लग गए यहाँ योग मार्ग से। हनुमान जी तो अपने बल से जाते हैं और ये योग बल से आकाश में उनको लेकर के आ रहे थे। यहाँ आते आते लघु शंका हुई बड़ी जोर से, रोक न सके, बस वहीं पर उतरे। देखा जो यहाँ पर सरोवर है तो यहीं पर लघुशंका करके और तब आगे बढ़ गया। लघुशंका करने के लिए रख दिया, घंटों उनके होते रहे पेशाब उनका होता, रुके ही नहीं। इतने में शाम भी हो गई, जब उठे फिर उन्होंने स्नान किया, आचमन किया, लेकर के उनको चलने के लिए तैयार हुए। बोले जी हमारे हाथ पर आ जाओ हथेली। उन्होंने कहा जी अब मैं नहीं जाऊंगा, मैंने पहले कहा था अपवित्र स्थान हमको नहीं ले जा सकता, और दूसरी बात एक बार बीच में रख देगा तो हम नहीं चले, तू नहीं चलेगा तो नहीं, तो अभी संपात दे दूंगा, तो अब संपात कहे जो कुछ कर दीजिए अब मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी देखो नहीं चलेगा तो सुन लो, तुम क्षण क्षण में खीन होगा, ऐसा कि ना कुछ दिनों के बाद में कलयुग के घोर कलयुग आने पर तुम्हारा कोई पता ही नहीं रहेगा, एक तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे और बाकी सब मिट्टी के अंदर में तुम चला जाएगा। काजे यो मस्तु, कृष्ण की लीला का दर्शन करने का तो सौभाग्य मिलेगा, जन्म लिया है वो मरेगा, किंतु एक क्षण में यदि मृत्यु हो जाए और भगवान का नाम उसमें आ जाए तो वो जीवन सार्थक हो गया। भगवान की लीला कथाओं को सुनने के लिए एक मिनट के लिए भी हो गया तो वो जीवन सार्थक हो गया। पहाड़ की तरफ में, पर्वतों की तरफ में लाखों वर्षों की करोड़ों वर्षों की आयु लेकर के क्या होगा यदि भगवान का भजन ही नहीं हुआ, तो हमको बहुत मंजूर है। ठीक, बस हो गए, भगवान उन पर प्रसन्न हो गए, हमारे लिए इतना इसकी निष्ठा। बस फिर गिरिराज ने उनकी सारी लीलाएं वहां पर हुई, अधिकांश लीलाएं कृष्ण की अत्यंत गोपन लीलाएं भी वहां पर हुई। श्रीमद् भागवत में स्वयं गोपियों ने इनकी महिमा का गान किया है। वैसे तीन हरिदास जी हैं, पहले युधिष्ठिर महाराज जी हैं जिनके घर में निर्लिंग बेस में, मनुष्य के बेस में भगवान वहाँ पर सब समय रहते और ऋषि महर्षि लोग उनके दर्शनों को जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी ने नारद जी की बहुत आराधना की और उनको सम्मान देकर के आज हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारे बाल बच्चे आज धन्य हो गया, हमारा घर पवित्र हो गया, आप जैसे ऋषि हमारे घर में। नारद जी बोले, अहो तुम सौभाग्यवान हो या मैं हूं जिसके घर में स्वयं कृष्ण मनुष्य के रूप में यहाँ पर रहते हैं और ऋषि महर्षि लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। हमारे आश्रम में भगवान नहीं जाते, वहां नहीं रहते हैं और अपनी रानियों के समेत में सब लोगों के साथ में ये कृष्ण स्वयं भगवान और द्वारका की जितनी रानियां हैं और सब लोगों को लेकर के तुम्हारे यहाँ बात करते हैं। बतलाओ तो तुम धन्य, हमारी कुटी में से ये न जाते हैं और न ऋषि महर्षि वहां पर दर्शन करने के लिए जाते, इसलिए आप। इसे युधिष्ठिर महाराज जी हरिदास और उद्धव को कहा गया हरिदास वर, हरिदासों में श्रेष्ठ क्योंकि कृष्ण के वो मंत्री हैं, सखा हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सब कुछ उनके हैं, सलाह देने वाले मंत्री भी हैं, सब कुछ हैं और सब समय उनके यहाँ रहते। बचपन से ही खेल तमाशा नहीं जानते, बच्चों में खेलना नहीं जानते, बच्चों के साथ में खेलना करके क्या करते थे, बस कृष्ण की मूर्ति रख करके उनका ध्यान लगाते, उन्हीं को खिलाते पिलाते लाड़ प्यार करते बचपन से ही और घंटों रोया करते उनके विरह में तड़पते रहते। जब कृष्ण मथुरा से वृंदावन से मथुरा आए तो उनके सहायक मंत्री सखा बंधु भाई सब कुछ बन गए। कृष्ण को जो सबसे अधिक कोई काम आता था, सबसे अधिक अपने हृदय की बात होती थी तो अपना प्रतिनिधि बना करके उद्धव को ही भेजे, इसलिए उद्धव जी को ब्रज में भेजा और किसी को नहीं भेजा, इसलिए वो हरिदास पढ़े और उनसे भी ये हरिदास वज्र। गोपिका भी उदितो हरिदास वज्र, हंसाय मद्रबला हरिदास वज्र, जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सर्वगुणयोस्तयो जत पानीय तू यव सकंदर खंडम। कैसे ही गिरिराज गोवर्धन जी कृष्ण की सेवा के लिए क्या नहीं करते। हंताय अबला हरिदास, कौन कह रहा है, गोपिका भी उदितो हरिदास वर्ज, ये कौन कह रहा है, दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, दास गोस्वामी या सनातन गोस्वामी,
दास गोस्वामी का गिरिदास दासनी वर्जी नामामृतम ऋतम से राधिका भक्तचंद्र,
वो राधिका भक्तचंद्र आप कहते हैं,
वो दास गोस्वामी का है
और ये दास गोस्वामी का है, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, संताय मद्रबला हरिदास वर्ज, जब राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, चरण स्पर्श करके प्रमोद में भर जाते हैं और क्या करते हैं, हमारे सखा आ गए, हमारे आराध्य आ गए, हमारे सर्वस्व आ गए, इसलिए उनके साथियों के लिए भी बच्चों के लिए भी कुंड में सुंदर मीठा पानी, फल मूल कंद, गाय के लिए घास, बछड़ों के लिए घास, कुसुम और मानस गंगा इत्यादि, गोविंद कुंड का सुंदर पानी, राधा कुंड का पानी उनके लिए, गैरिक धातु उनको लगाने के लिए, छाया वृक्षों की छाया और सिंहासन, सिंहासन कैसा, गिरिराज स्वयं सिंहासन बन जाते हैं, कैसा सिंहासन बनते हैं, ऐसे मालूम होता है कि इनकी इनके अंगों में कस्तूरिका भी सहितम कि मूत्रम, और कस्तूरी मृग क्या यहाँ पर सहनती है जिसमें सुंदर सिकंध निकल रहा है, कस्तूरी का गल नहीं सर्गे की गोवर्धनों में स्वाभाविक रूप में उनकी शिलाएं चमकती हैं, जैसे कृष्ण का श्याम रंग है ऐसे गोवर्धन का श्याम रंग है, मानो घी लगा करके लगा अच्छा, और स्वाभाविक रूप में सुगंध है। कभी कभी हिरणें समझती हैं कि हो ये बंसी बज रही है, बंसी क्या बजती है,
वंश
बांस की झाड़े वहां है, और उसमें से जब हवा आती है तो उसमें छेद है, तो उस छेद में हवा निकल करके मानो लाखों बंसी एक साथ में बजती है। हिरण वहां पर आ जाते हैं, उनको ये हो जाता है, वो भूल जाते हैं ये कृष्ण बजा रहे हैं कि ये बांस बज रहा है अपने आप। गोवर्धन लाखों बांसुरी एक साथ में बजाते हैं, ऐसे ही है। यहां तक कि ये समस्त कृष्ण के लीलाओं के साक्षी हैं। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे से रचत नवजूनु दंदमस्मिन्न मंदम इति कुल कर्णार्थक निज निकट निवासम दो। लाखों कुंज अब तो सब कुछ अब कट गए हैं, आप लोग तो देखेंगे नहीं, हम लोग के समय में कुछ कुछ थे कुंज, गुहाएं भी थी पहले, अब गुहाएं नहीं देखी, वो नीचे चली गई। पहले गुफाएं थी जिसमें राघव पंडित रहा करते थे वो पुछड़ी पर, और लाखों गुहाएं थी जिन गुहाओं में कंदराओं में राधा कृष्ण की निभृत लीलाएं रास इत्यादि होता था। कभी राधा जी छिप जाती हैं तो उनको खोजने के लिए प्रत्येक कुंज में कृष्ण जाते हैं, और गोपियों से वहां पर एक एक गोपियों से मिलन होता है। सखाओं के साथ में वहां पर उनमें छाया में बैठते हैं, गायों को चराते हैं, उसी के पास में अधिकांश कृष्ण की जो लीलाएं हुई हैं वो सब गिरिराज गोवर्धन के चारों तरफ। इसलिए वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है, किंतु वृंदावन से भी श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन, और गिरिराज के समस्त जगहों में राधा कुंड और श्याम कुंड जहां पर है वो राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ स्थान है। इस तरह से हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी उनका वर्णन किया है। क्या है उनका? निजपति भुज दंड छत्र भाव प्रपद्य प्रतिहत मधुशिष्टो दंड देवेंद्र गर्भ अतुल पिथुल शैल शेण भूप में निज निकट निवास देवी। गोवर्धन की लीला हुई, किस लिए लीला हुई? इसमें सभी रस है, प्रारंभ से दास रस से लेकर के मधुर रस तक सब गिरिराज गोवर्धन के को धारण किया था, उसमें सभी स्थिति हुई, सब रस के लोग वहां पर दास भी आए, सखा लोग सब आए हैं। कृष्ण उठा लिया गोवर्धन को, किस लिए उठाया, कैसे उठाया? बाएं हाथ की बाएं अंगुली से कनिष्ठ अंगुली से उठाया। राधिका जी बाएं में है, मैंने इस चीज को दिखलाने के लिए बाया का बाया अंतिम बाया लिया, अतः तो राधिका जी बाम में है, ये राधिका जी ने ही गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था।
हम लोग का दाएं हाथ में लेंगे,
यहाँ पर उल्टा हो गया। विशेष करके गोपियों का भी पूर्वराग था, कृष्ण से भी निकट से नहीं देख सकी थी। आज के दिन वो वर्षा चारों तरफ में विपत्ति में ये निकट और ये सब नहीं देखा जाता, कोई विपत्ति हो जाए। जैसे हमने वहां की कथा बतलाई थी शेरगढ़ में गोपी घाट की, राधा जी पानी भर करके ले आ रहे हैं, अभी बहुत छोटी सी थी, विवाह तो हो गया है और निकट आने का सुयोग मिला क्योंकि कृष्ण बेहोश हो गए हैं। उसमें कोई पतिव्रता छिद्र युक्त घड़े में पानी भर कर ले आए, उसको स्नान कराए तो वो जी सकते हैं। राधा जी को सुयोग मिल गया ना एकदम निकट आने का। वैसे गिरिराज गोवर्धन विपत्ति आई ब्रजवासियों पर, इंद्र की पूजा होती थी उसके बदले में कृष्ण ने नंद बाबा को कह करके गिरिराज की पूजा कराई। उन्होंने कहा जहां पर इंद्र नहीं है पूजा नहीं होती, वहां पर क्या वर्षा नहीं होती, इसलिए हमारे समय से गोवर्धन की पूजा की जाए क्योंकि गोवर्धन है गाय वंश का, गो वंश के वो विस्तार करने वाले बढ़ाने वाले हैं, उनकी सेवा करने वाले हैं, और गाय गो गोपी पानी देने वाले हैं, मीठा सबको फल मूल कंद इत्यादि देने वाले हैं, गाय के लिए घास देते हैं, हम लोगों के लिए छाया देते हैं, खेलने के लिए किसी तरह की गाय की घास नहीं देते हैं। इसलिए इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, इसलिए सब वालों ने मिल करके आज के दिन में गोवर्धन की पूजा की। कृष्ण एक कृष्ण बन गए और एक गोवर्धन पर चढ़ करके गोवर्धन बन गए। बहुत बड़ा रूप धारण किया, बल्कि चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। साधारण लोगों के लिए ऐश्वर्य भाव चाहिए तब तो भगवान मान गए, अर्थात ऐसा भगवान नहीं माने, इसलिए वहां पर चतुर्भुज होकर के विशाल विकराल रूप धारण किया। जब इन लोगों ने निवेदन किया नैवेद्य, तो दोनों हाथों से लेकर के खाने लगे। अब मिनटों में लाखों गाड़ियों पर नाना प्रकार के पुआ पूरी पकवान सब जो आए थे उन्होंने खा लिया। और वहीं से ऐसे किया तो मनसी गंगा का पानी पूरा एकदम पी लिए। कहा जी आनो रे आनो रे आनो रे, और ले आओ और ले आओ। जहां पर किया था उन्होंने आनो रे वो गांव हो गया अन्योर। वो गांव इसकी साक्षी देता है कि ये झूठ मूठ की कपोल कल्पना नहीं है। और जब मांगने लगे तो कृष्ण ने हाथ जोड़ दिए। ब्रजवासी जी ने कहा अभी आज तक इंद्र कभी प्रकट होकर के लिया नहीं लिया, आज तुम्हारे ऊपर में प्रसन्न है। आज जब वो और मांगने लगे तो बोले जैसे हम लोग गरीब गोप है, हमारे पास में और कुछ नहीं, जो कुछ था आपके यहाँ पर हम लोगों ने निवेदन कर दिया, अब आप अपने ही प्रसन्न हो जाए। तो साथ ही साथ उन्होंने और जो बचा हुआ पानी कुसुम सरोवर और का था पी करके और डेकार दिया। बड़ा गर्जन विशाल गर्जन हुआ और बोले ये ब्रह्म ब्रूही जो कुछ मांगना है मांग। सब गोपों ने मांगा और गोपियों ने मांगा। क्या मांगा? धन धान्य पुत्र यौवन ये सब मांगा नहीं, सब लोग एक मांगा जे कृष्ण हमारा बच्चा सुखी रहे, उसके ऊपर में कोई विपत्ति नहीं आए, उसे बस और कोई बात नहीं मांगा। हम लोग होते तो मांग लेते कितना, लड़की की शादी नहीं होती है, लड़के की शादी नहीं होती है, घर का टल्ला पचतल्ला बन जाए, पेड़ों में पेड़ जोड़ देंगे, डालियां जोड़ देंगे, ईंट पर ईंट रख करके कितने अभी जाएंगे परिक्रमा में देखें ईंट पर ईंट लगे हुए हैं, चार तल्ला पांच तल्ला दस तल्ला सब लगा हुआ। गिरिराज गोवर्धन कहते हैं जैसे दुर्भागा जी जाओ यही तुम्हारी स्थिति हो जाए। किंतु गोपों ने कहा एकमात्र ये छोटा नंद का जो लाला है जो हमारे ब्रज का प्राण है इस पर कोई विपत्ति आपत्ति नहीं है। इस पर बहुत विपत्तियां आती हैं ना जाने क्यों, बचपन से उतनाई अगासुर बकासुर ना जाने सुनावत सकटासुर ये सब बड़ी विपत्तियां आई। तो प्रभु आप ही रक्षा करते हैं, आप इस नंद के लाला को आप रक्षा करते हैं। इस तरह से सब लोगों ने उनसे एक ही बर प्राप्त। हम लोग भी आज के दिन बस एक ही बर मांगे, अपनी अपनी भावना संसार में जैसा होगा कृष्ण के लिए राधा जी की दास होने के लिए हम लोग मांगे। हम लोग पर यदि गिरिराज प्रसन्न है तो ये गिरिराज और दूसरे कौन नहीं, कोई नहीं है, ये कृष्ण ही है। दो रूप इनका है, एक सेवक रूप है और एक सेव्य रूप है, दोनों रूप है। सेव्य रूप कैसे हैं? वही एक कृष्ण के रूप में पर्वत के ऊपर में पर्वताकार में हुआ है और दूसरे सेवक रूप में है। दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुनाथ जी को जो शिला दी थी उसको गिरिराज जी की शिला दी और दे करके एक उसके साथ में और चीज दिया,
गुंजामाला।
गुंजामाला गिरिराज जी कौन है उनके लिए कहा,
कृष्ण।
और गुंजामाला कौन है, उसकी प्रतीक कौन है, राधा जी। तुम अष्टमंजरी ना आठ मंजरी कोमल कोमल हो और दोनों तरफ में पत्ते हरे हरे हैं सुंदर हो, उसमें कोई कीड़े के खाए इत्यादि न हो। वैसे तुलसीदास तुलसी भी कभी अपवित्र नहीं हो, सुखी हो, कीड़े छेद भी कर दिया हो, जैसे भी हो धो करके पवित्र करके उनको दे वो सब भाई। आठ मंजरियों के 16 पत्ते उसके दोनों तरफ में, दो दो पत्ते उसको लेकर के और पानी एक पूजा एक सुराही पानी उनको देने और देने से वो प्रसन्न हो। इनसे तुमको राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी, उनका प्रेम प्राप्ति होगा। गिरिराज की ऐसे ही पूजा हो, दो रूपों में, एक सेवर सेवक रूप में, एक सेवक रूप में। हम लोगों के लिए लाभजनक क्या है? उनको सेवक रूप में मानना लाभदायक है, न सेव्य रूप में मानना हमारे लिए। सेव्य रूप में होने से तो कृष्ण के रूप में मिल सकते हैं, बात ठीक है, किंतु राधा और कृष्ण में जब दोनों रहे तो हम किसका आश्रय लेंगे? कृष्ण का आश्रय लेंगे ना राधिका जी का? बुद्धिमान लोग हैं वो कृष्ण का लेंगे, और हमारे जैसे लोग हैं वो कहेंगे नहीं। वो लोग विचार करेंगे कृष्ण समस्त अवतारों के अवतारी आदि अनादि स्वयं हैं, सब कारणों के कारण है, इसलिए कृष्ण का शरण लेना चाहिए। नारद इत्यादि जो ब्रह्मा इत्यादि जो ऋषि महर्षि लोग हैं ये सब उद्धव हैं, अक्रूर हैं, ये सब किसकी शरण लेते हैं? और हम लोग चैतन्य महाप्रभु जी से थोड़ा सा उनके चरण की धूली किसी प्रकार से हम लोगों तक आई, इसलिए हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग को राधा जी की ही दासी है। पदाभ्यो सौ बना बरदास्तमे वक्त समय एक देवी जाते दाक्षाय थे सख्याय थे ममो नमस्तो नमस्ते नित्यम दाक्षाय थे ममो रसोस्त। हम तो राधा जी की ही दासी होना चाहते हैं, बल्कि कृष्ण आएंगे राधा जी के कृपा के बल पर जरूरत होगी तो उनकी उपेक्षा करनी, नहीं इधर से जाओ उधर जाओ, इधर से रास्ता नहीं है, इधर में आप जा नहीं सकते, राधा जी के कृपा के बल से उनसे ठिठाई भी करेंगे और कृष्ण उसे और प्रसन्न होंगे। और कृष्ण कहेंगे जो वर मांगो हम प्रसन्न है तो क्या मांगेंगे? श्याम सुंदर शिखंड से करिष्मय हास मुरली मनोहर राधिका रसिक मान कृपा निधे स्व प्रिया चरण की, आप अपनी प्रिया जी के चरण किंकरी हमको बना लिए सदा के लिए, यही उसे प्रार्थना। राधा जी कहेंगे तू हमारी सहेली बन जा और दोनों मिलकर के कृष्ण की सेवा करेंगे। तो रघुनाथ दास जी प्रार्थना करते हैं नहीं, सहेली के लिए हमारा नमस्कार है कोटि कोटि, मैं तो आपकी पाल्य दादी होकर के रहूं, आप टुकड़े दे देंगी तो ग्रहण कर लेंगे, बस मेरे अभिनंदन में यही रघुनाथ है, मैं तुम्हारी दासी की दासी की दासी। गोपी भर तुम पदक मने और दास दास, यहाँ पर दास दासी दासी ऐसा होता है। इसलिए गिरिराज जी आराध्य के रूप में सिद्ध हैं, उनकी अपेक्षा सेवक तत्व में हमको लाभ है, क्योंकि कृष्ण को भी कभी कभी लोभ होता है, राधा जी का हमारे प्रति कैसा प्रेम है, कैसा प्रणय है, राधा या प्रणय महिमा कैसा हमारे प्रति जो हमको भी मुग्ध कर देती है, उनको आस्वादन करने की उनकी भावनाओं की उनके अंदर में एक ललक पैदा होती है, लोभ पैदा होती है। इसलिए राधा जी का भाव और राधा जी की अंग कांति को ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो पधारे हैं। चैतन्य महाप्रभु के राधा जी उनको वशीभूत कर लेती हैं, कृष्ण को देख करके राधा जी को जो भाव होता है और राधा जी कृष्ण को देख करके उनके अंदर में जो भावना होती है और कृष्ण को देख करके राधा जी को भावना और राधा जी को देख करके कृष्ण की जो भावना होती है, राधा जी की भावना बहुत श्रेष्ठ होती है, उनका प्रेम बहुत उच्च कोटि का होता है। इसलिए हम लोग यदि उनके सेवकों के सेवक के सेवक हो सकें तो हम लोग को अधिक लाभ होगा, कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाए। इसलिए गिरिराज जी का यह रूप सेवक रूप हम लोगों के लिए अत्यंत सुखकर है, अत्यंत लुभावना है। गिरिराज जी कृष्ण के लिए कुंज सब बनते हैं, कुंजों में राधा कृष्ण का मिलन या गोपियों के साथ में सखाओं के साथ में उनका मिलन होता है, पति कंदरे कंदरे में होता है। वहां पर गिरिराज जी में गोपी घट है मानसी गंगा के, वहां पर नौका बिहार इत्यादि होता है, बहुत लुभावना हमारे उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी ने रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है। यही नहीं दान घाटी बीच में है, गोवर्धन के बीच में, जहां पर ऐसी लीलाएं कभी नहीं हुई, कृष्ण लीला का अतिरिक्त ये सब लीलाएं कभी संभव नहीं। कृष्ण की लीलाओं में भी राधा कृष्ण के विलासों में भी एक परम उन्नत विलास, गोपियां आ रही हैं घी मक्खन दूध सब लेकर यज्ञ हो रहा है गोविंद कुंड में, और वो आ रहे हैं कहाँ से, उस समय बरसाने में है, बरसाना के गोपियों के साथ में लाखों लाखों गोपियां मिलकर के और मानसी गंगा के किनारे होते हुए गायन करती हुई सिर पर कलशे लेकर के उसमें मक्खन इत्यादि भरा हुआ वो आ रहे हैं। कृष्ण को सुगंध लग गई, वो आज जा रही थी गोविंद कुंड में, ऋषि लोग महर्षि लोग यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ किसके लिए हो रहा है, भागुरी ऋषि या कौन, वो सब यज्ञ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, बड़े रसिक हैं भागुरी ऋषि, वो वहां पर यज्ञ कर रहे हैं, माने मिलाने के लिए, दोनों को मिलन करने के लिए उन्होंने एक उपाय सृजन किया। तो वो गोपियां आ रही हैं, कृष्ण को गंध लग गई, ये गोपियां आ रही हैं बरसाने से, बस घाटी पर बैठ गए। घाटी किसको कहते हैं, दान घाटी, जहां पर कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाते हैं ना तो वहां पर टैक्स देना होता है, तो वहां पर उधर से बरसाने से आ रहे हैं इस तरफ में गोवर्धन की, वहां पर पहाड़ ऐसे निकला हुआ है, उसके अतिरिक्त तो दूसरा रास्ता नहीं था उस समय में। गोवर्धन को सुनते हैं कि 5 माइल ऊंचे थे, बीच में यही एक रास्ता था, इसलिए उधर से लोग पास करते थे, जैसे कि बरसाने में
साकरी खोर
है गहवर वन के अंदर, तो पार कर रही हैं, तो वहीं पर उपस्थित हो गए सखाओं के साथ में। उन्हें कहा कि कर दे करके जाओ, ओ तुम लोग रोज यहीं पर, यहीं से आती है और आती है और कोई टैक्स नहीं देती, ये वृंदावन मेरा है, टैक्स दे करके जाना, और हमारे वन को तुमने, उपवनों को सब चौपट कर दिया तुमने, फूल फल लगे हुए तो वो सब चौपट हो गए, घासों को तुमने पैसे आकर के मरोड़ तोड़ करके रख दिया, वन को चौपट कर दिया। तो कृष्ण ने कहा जानती हो मैं कौन हूं, जानती हो तुम कौन है, प्रश्नोत्तर होने लगा। तो उन्होंने कहा जानती हूं आपको, आप मैं कौन हूं, मैं यहां का सबसे बड़ा ये इस वन का मैं अधीश्वर हूं, वृंदावनेश्वर हूं। तो ललिता जी ने उनसे प्रश्न किया, तू भूई फोड़ हो गया, भूई फोड़ माने यहां का मालिक हो गया ना, तुम्हारे वंश परंपरा में यहां का कोई है, तुम्हारे दादा परदादा से लेकर के इसके मालिक है ना, तुम आज नया बन गया, नहीं हम तो हम सब जबते हैं तबते हैं, तो कैसे है बतलाओ, ये पत्ता है ना क्या है, तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे पिताजी राजा थे ना उनके पिताजी राजा थे, कैसे तुम्हारे पास में यह राज्य। उन्होंने कहा जैसे भी हमको आया, हमारी पत्नी वृंदा देवी हैं, उनसे यह राज्य है, उनकी राजधानी है और यह ब्रज उनका ही राज्य है, इसलिए वो वृंदावनेश्वरी हैं। जब मेरी विवाहिता पत्नी है तो उनकी सारी संपत्ति मेरी हो गई। अच्छा, गोपियां हंसने लगी एक दूसरे की तरफ में मुख देखने, अच्छा वृंदा जी को बुलाओ पास ही में है ये कहे, तो वृंदा जी को बुलाया गया, उनसे प्रश्न किया गया ये आप इनकी विवाहित पत्नी हैं, कब सभा में विवाह हुआ, विवाह का कोई साक्ष्योक्ति है कि ऐसे ही जिसको इच्छा की उसको अपनी पत्नी बना दिया। तो वृंदा जी ने कहा इससे तो हमारा कोई परिचय नहीं है, अंतर बाहर काला, इससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। तो राधा जी कहती हैं कि ललिता विशाखा में से कोई ये कहते हैं झूठा लबार नंबर एक। अच्छा तुम ये बतलाओ, तुम वृंदावन का मालिक हो गया, विवाह का तो बात छोड़ो, तुम एकदम झूठा है, इसे तो कोई शादी की कोई बात नहीं है, तुम ये बतलाओ वृंदावन में एक बिरवा एक घास भी तुमने लगाई, पानी सींचा कहीं। अब कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, राधा जी अब झटाझट बोल रही हैं, अच्छा आज भक्षक ही रक्षक बन रहा है, कैसे देखो लाखों गायों के साथ में लाखों ग्वाल लोग आते हैं और फिर घासें नष्ट करते हैं, पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं, उछलते कूदते हैं, पौड़ों को पौधों को रौंद डालते हैं, गायों से चरवा करके और उनको छुड़वा करके सब नष्ट भ्रष्ट करते हैं। तो तुम ऐसे व्यक्ति आज उसके तुम रक्षक बन गए। सत्यवादी नंबर एक परम धर्मात्मा आप हैं, परम परम धर्मात्मा। बचपन से ही आपने कभी झूठ नहीं बोला, मैया से भी झूठ नहीं बोला। मैया ने पूछा जो मट्टी खाई, मैया पति मैंने कब खाई, मैंने तो मट्टी नहीं खाई, मुंह कैसे देखा तो मट्टी का ढेला निकल। और ऐसा धर्मात्मा बिना, ऐसा कोई दिन नहीं गया जो चोरी नहीं की घरों में घुस करके, ऐसा कोई घर ही नहीं जहां पर चोरी नहीं की, घर घर में चोरी कर सके, किसी का मक्खन बचा नहीं, अंधेरा कर दिया तो अपने कंगन के और अपने अंगों की रोशनी से उसको खोज लिया, सिकल लगा दिया तो सिकल खटिया के ऊपर में ऐसे ऐसे चढ़ करके, या बच्चों के ऊपर में बच्चे चढ़ा करके चढ़ करके उसमें से निकाल दिया, यदि अधिक ऊंचा है तो कोई गठिया से ऐसे पेली में छेदा कर दिया गिरने लगा खाने लगा, यदि उसको चुरा करके रखा तो बच्चों को चिमटी जोर से काटी और बच्चा रोने लगा और वहां से चले। इस तरह से आपने चोरी की, इसलिए आप धर्मात्मा। और जब थोड़े से बड़े हुए तो चिरघाटी याद है आप, बच्चियों को, छोटी सी मासूम मासूम बच्चियों को उनके कपड़े चुरा लिए, अब इससे बड़ा धार्मिक और आदमी कौन होगा। इसलिए आप परम धार्मिक है, ऐसे उत्तर प्रत्युत्तर किए जो उनका मुख तो भी हार करके भी जीतते हैं, क्योंकि हारने पर क्या होना चाहिए, पीछे लगता है ना। तो जब श्री राम ने कृष्ण को हरा दिया है